सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक भर भरत का
सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक भर भरत का
सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका
सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका
अजन दो वरदान चाहिए लेकिन ये मांगने से पहले आप राम की शपथ खाओ राम की कसम खाओ बोले राम की कसम मैं तुम्हें दोनों वरदान दे दूंगा तब सुनो पहला वरदान मैं तुमसे मांगती हूं कल तुम राम को राजा बनाने वाले हो ना राम को राजा न बनाकर मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ भरत का राज तिलक करो
सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का भरत का
सुनहु प्राण प्रिय भावत का देहु एक भर भरत टीका
राजा ने कहा बस भरत को राजा बनाना चाहती हूँ भरत को राज्य दे दिया और ये बात जब राम सुनेगा ना तो मेरे से ज्यादा प्रसन्न होगा कहीं कहीं तुमसे ज्यादा तो राम खुश होगा कि हमारा छोटा भाई भरत राजा बनने वाला है मुझे राम पर विश्वास है अरे वो तो वैराग्य की मूर्ति है उसे राज्य नहीं चाहिए ये तो बड़ा सोचकर मैंने उसको राजा बनाया था परंतु तुम चाहती हो भरत राजा बने जाओ भरत को राजा मैंने दे दिया बना दिया अब दूसरा वर मांगो राजा कह रहे हैं अब दूसरा वर मांगो अब मेरे मन में धीरज नहीं रह रही है जल्दी दूसरा वर मांगो
मांगो दूसरा वर बर कर जोरी गुरु नाथ मनोरथ मोरी
मांगो दूसरा वर बर कर जोरी गुरु नाथ मनोरथ मोरी
देवी दोनों हाथ जोड़ता हूँ दूसरा वरदान मांग लो जो जो तुम्हारे मन की चाहे मांग लो मैं देने के लिए तैयार हूं जब ये कहा तब कैके कहती है
तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी
तापस वेश विशेष उदास राम वनवासी
तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी
तापस वेश विशेष उदासी 14
तो ये केवल राजा दशरथ के जीवन की घटना नहीं है ये हम सबके जीवन की घटना है ये रामायण कहीं और नहीं ये रामायण हमारे जीवन में है हमारे अपने कुटुंब में है हमारे समाज में है कहीं ना कहीं एक दशरथ किसी के अंदर बैठा है कहीं ना कहीं कैकेयी किसी के अंदर बैठी है कहीं ना कहीं राम किसी के अंदर बैठा है कहीं ना कहीं भरत बैठा है हमारे जीवन में भी ऐसी घटना आती है
तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी
तापस वेश विशेष शेष उदासी चौदह बरिस राम वनवासी।
कहीं दूसरा वरदान मांगा, तापस वेश विशेष उदासी राजन। दूसरा वरदान है आपके बड़े पुत्र राम, जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, उसे 14 वर्ष के लिए तपस्वियों के वेश में 14 वर्ष के लिए वन में भेज दो। भूल कर भी अयोध्या 14 वर्ष के लिए वापस नहीं आना चाहिए। इतना सुनते ही राजा दशरथ के हृदय में धक्का लगा, जैसे चंद्रमा की किरण से चकवा निर्मल हो जाता है, विकल हो जाता है, वैसे कैकेयी के इस वचन से राजा दशरथ निर्मल हो गए, विकल हो गए। राजा सहम गए, राजा के मन में कुछ वचन नहीं निकल रहे हैं, मौन हो गए, मानो बाज किसी खेत में झपट मार चुका हो और वह खेत सन्नाटा हो जाए, शांति हो जाए, वैसे उस कक्ष में सन्नाटा हो गया। राजा का रंग बदल गया, मानो कोई बिजली ताड़ के वृक्ष पर गिरी हो और वह वृक्ष जलकर राख हो गया हो, वैसे राजा दशरथ। उस समय राजा दशरथ का जो प्रभाव था, जो तेज था, वहां पर राख हो गया। राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर गए। कुछ समय तक समय के बाद राजा दशरथ उठे और कैकेयी को कहते हैं कि कैकेयी, वास्तव में तुम मजाक कर रही हो, मेरे से ऐसा उपहास मत करो। जो भी दूसरा वर मांगना है मांग लो, परंतु ऐसी मजाक मत करो। अभी भी राजा दशरथ को यह मजाक लग रही है, उपहास लग रहा है। कैकेयी बार बार कह रही है, राजन मैं वास्तव में मांग रही हूं, आप अपने पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजो। राजा दशरथ दोनों हाथ जोड़कर मना रहे हैं, ऐसा वर मत मांगो। कैकेयी कठोर होकर कहती, याद करो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजन तुम वचन दे चुके हो, अब या तो तुमको मरना है या मेरी इच्छा को पूर्ण करना है। राजा दशरथ दोनों हाथ मस्तक के ऊपर रखकर अपना नेत्र बंद कर लिए। राजा दशरथ मन ही मन में सोच रहे थे, अरे मैंने कैसे मनोरथ किए थे, मेरे मन में मैंने क्या कितना कुछ सोच कर रखा था, इस महिला ने, इस नारी ने मेरे मनोरथ पर पानी फेर दिया। मोर मनोरथ सुरत भूला, फरत करी निजी हते ऊ समूला।
मोर मनोरथ सुरत भूला, फरत करी जिमी हते ऊ समूला।
मेरे जीवन का परिश्रम, इतने जीवन की मेहनत का फल आज मुझे मिलने जा रहा था। मैंने अनेकों सुंदर सुंदर मनोरथ करके रखे थे, कैकेयी तूने मेरे मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर गिरा दिया है। कैकेयी एक बार जीवन में एक बार तुझे पूछे बिना मैंने कार्य किया और उसकी इतनी बड़ी सजा, कैकेयी मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मैं राम के बिना जी नहीं पाऊंगा। कैकेयी आज तूने अयोध्या को उजाड़ दिया, आज अयोध्या के इतने सुंदर बगीचे में सुंदर सुंदर फूल उगे थे, परंतु मदमस्त हाथी की तरह कैकेयी आज तूने अयोध्या को उजाड़ दिया।
अवध उजारी कीनी कैकेयी, दिन हसी अचल विपति के ने। अवध
सारी अवध्या अनाथ हो जाएगी। कैकेयी अभी भी इस वर को वापस ले लो, इस वरदान को खींच लो, दूसरा कुछ मांग लो, कैकेयी मानने के लिए तैयार नहीं है। कैकेयी मैं जी नहीं पाऊंगा, जैसे मछली बिना पानी के एक बार जी सकती है, परंतु ये दशरथ बिना राम के जी नहीं पाएगा। राम मेरे प्राण है, चाहे तो तुम मेरी सारी संपत्ति मांग लो, चाहे तो कह के तुम मेरा मस्तक मांग लो, परंतु राम को वनवास मत दो। कई कई दशरथ के बात को मान नहीं रही है और बार बार कहते हैं नहीं, मुझे राम को वनवास में भेजो, यही वरदान चाहिए। बार बार कहके कह रही है, दशरथ विनंती कर रहे हैं। अंत में दशरथ ने कहा, कई कई राम को वन में भेजना है, भेजो, कोई बात नहीं, परंतु वहां पर एक तलवार लटक रही है, उस तलवार को उठाकर यहां पर आओ और मेरा मस्तक काट दो, और फिर तुम्हें जो करना है करो मेरे मर जाने के बाद, परंतु जीते जी मैं मेरे प्राण स्वरूप राम को इस घर से जाते हुए नहीं देख पाऊंगा। इतना कह के राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर गए, और मूर्छित होते होते कह रहे हैं कि कई कई यदि तूने अपने वचन को नहीं बदला, पूरे जीवन भर पछताएगी, एक जन्म के लिए नहीं सात सात जन्म तक तेरी छाती जलेगी, तू सात सात जन्म तक पछताएगी, मेरे इस वचन को याद रखना। इतना कहते कहते राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर गए। उस समय सुमंत्र जी आए हैं, राजा दशरथ को मूर्छित देखकर सुमंत्र जी राजा के मंत्री हैं, दौड़कर राजा के मस्तक को अपने गोद में रख लिया, राजन क्या हुआ? राजा दशरथ रोते हुए कहते हैं कि सुमंत्र आज तक संसार में लोग मुझे पुण्यशाली मानते थे कि आप कितने पुण्यशाली हो, आपको चार चार पुत्र हैं, इतनी बड़ी संपत्ति राजराजी। सुमंत्र आज तक सब लोग मुझे पुण्यशाली कहते थे, परंतु मेरे और कौशल्या के जैसे अभागे इस संसार में कोई नहीं है, मेरे जैसा पापी इस संसार में कोई नहीं है। सुमंत्र जी मैंने गत जन्म में बहुत पाप किए होंगे, मैंने गायों को मारा होगा, मैंने पशु पक्षियों को सताया होगा, मैंने दूसरों को दुखी किया होगा, गत जन्म के पाप का फल मुझे मिला है, कैकेयी ने राम को वनवास दिया है। इतना कहकर महाराज मूर्छित हो गए और तुरंत कैकेयी ने सुमंत्र जी को भेजा, जाओ राम को बुला कर आओ। सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री रामचंद्र को सुमंत्र जी ने उठाया। सुबह 7 बजे भगवान रामचंद्र राजा बनने वाले हैं और 3:30 बजे राम को लेकर सुमंत्र जी जा रहे हैं। सीता जी के हृदय में विचार आ रहा है कि आज तक ऐसी घटना घटी नहीं, अचानक बुलाकर चले गए, क्या हुआ होगा? और भगवान राम जब उस कोप भवन में प्रवेश करते हैं, पिता को मूर्छित देकर दौड़कर पिताजी के पास गए, पिताजी क्या हुआ? यदि आप किसी धर्म से च्युत हो रहे हो तो मुझे बताओ, मैं आपके कर्तव्यों को पूर्ण कर दूं, आपकी जो इच्छा हो पूर्ण करने के लिए तैयार हूं, परंतु आप ऐसी अवस्था में मत रहो। दशरथ जी के मुख से वचन नहीं निकल रहा है, क्या बताऊं मेरे पुत्र को कि मैंने तुझे वनवास दे दिया। कुछ नहीं बोल पाए, तब भगवान राम कैकेयी के पास गए, माता जी पिताजी तो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, आप तो बताइए, आप तो मेरी माँ हो, आप तो मुझे बहुत प्रेम करती हो, यदि वास्तव में आप मुझे प्रेम करती हो, मेरे ऊपर आपका स्नेह है, तो आप मेरे पिता की इस अवस्था का कारण बताइए। तब कैकेयी कहती है कि आपके पिता ने मुझे दो वरदान दिए थे, मैंने पहला वरदान मांगा भरत को राजा बनाना है। बोले बस भरत को राजा? भगवान राम तो नाचने लगे, मेरा भाई भरत राजा बने, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, मेरी भी यही इच्छा थी। बोले दूसरा वर ये है कि तुमको 14 साल के लिए तपस्वियों का वेश लेकर वन में जाना है। बोले वाह मैया वाह। भगवान राम ने दंडवत प्रणाम किया कैकेयी को कि मैया धन्यवाद, आपने आज मेरे ऊपर अद्भुत कृपा की है, आज आपने मेरे पर वास्तविक कृपा की है, क्योंकि यदि मैं अयोध्या में रहता तो केवल अयोध्या की प्रजा को मिलता, आपने मुझे वन में भेजा है, अनेक अनेक साधु महात्मा संतों का दर्शन होगा, कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा, अनेक लोग हमारा दर्शन करके उद्धार करेंगे, असुरों का विनाश होगा, साधुओं को आनंद मिलेगा और धर्म की स्थापना होगी। ये सारे कार्य का श्रेय माँ एकमात्र आपको जा रहा है, आपने मेरे पर कृपा कर दी। बस इतना सुनकर तुरंत भगवान श्री रामचंद्र कई कई कौशल्या के पास गए। गोस्वामी तुलसीदास जी, यहाँ पर भगवान राम चल रहे हैं और दो श्लोक संस्कृत में गोस्वामी ने लिख दिया, प्रसन्न आत्मया गताभिषेकत तथान ममले वनवास दुखत। भगवान राम के विषय में गोस्वामी जी लिखते हैं, जब राम को कहा गया कि तुमको कल राजा बनना है तो फुदकने नहीं लगे, नाचने नहीं लगे, हृदय में इतना आत्यंतिक सुख नहीं हुआ। और जब राम को पता चला तुम्हें वनवास में जाना है तब राम को दुख भी नहीं हुआ। आज तो भाई भाइयों में जब संपत्ति बांटी जाती है थोड़ा भी कम ज्यादा हो जाता है तो झगड़ा होता है, ये तो सब कुछ छोड़कर निकल जाना है, लेकिन फिर भी भगवान राम उसी मुद्रा में प्रसन्न है। ऐसी प्रसन्न मुद्रा मेरे हृदय में बसी रहे, ये है प्रभु भगवान श्री राम। कौशल्या के पास गए, कौशल्या तैयारी कर रही है, आरती की थाली तैयार करके बैठी है, भगवान राम प्रणाम किए और कौशल्या कर रही कि राम तूने अभी स्नान नहीं किया, अब मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी स्नान करके आओ। बोले मैया आज पिताजी की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा हुई है, देखिए भगवान का शील देखिए, दूसरा कोई होता तो कह दिया होता, उसने दे दिया मुझे वनवास, अब जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान के बोलने का शीलता भगवान की अद्भुत है। भगवान राम ने कहा कि मैया पिताजी ने देखा कि मैं बहुत गुणवान हूं और इतना गुण है, ये छोटी सी अयोध्या का राजा, पिताजी ने सोचा कि ये छोटी सी अयोध्या का राजा क्या बने, इसे फॉरेस्ट मंत्री बना दूं, जंगल का राजा। पिता दीन मोहे कानन राजू, माताजी मेरे पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है, ये है वाणी, सौम्य स्वभाव, सौम्य वाणी। इतना सुनते ही 14 साल के लिए जंगल में जाना है, ये सुनते ही कौशल्या के हाथ से थाली गिर गई। ये क्या बोल रहे हैं, ये कभी हो नहीं सकता है, और यदि तेरे पिता ने तुझे जंगल में जाने के लिए कहा है तो मैं भी राजमाता हूं, मैं भी रानी हूं, मैं तेरे पिता को समझाऊंगी, मैं तेरे पिता को कहूंगी कि ये जो आपने राम को वन में जाने के लिए कहा है उसे ना कह दो, मेरा भी कुछ हक बनता है, तूने मेरे कोख से जन्म लिया है, तुझ पर मेरा भी अधिकार है, मैं कैसे भी करके तुझे जाने के लिए रोक दूंगी, तेरे पिता को कहूंगी। तब भगवान धीरे से बोले कि माता जी ये कृपा पिता की नहीं, ये कृपा माँ कैकेयी की है। तब कौशल्या ने कहा कि यदि कैकेयी ने तुझे कहा है जाने के लिए तब तो मैं भी नहीं रोक सकती हूँ, मैं नहीं रोक सकती हूँ, जाओ बेटा तुम जाओ, अपने धर्म का पालन करो, क्यों, क्योंकि एक माँ ने तुम्हें कहा है और माँ की खुशी यही पुत्र की खुशी है। देखिए कौशल्या ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर कहा कि एक पुत्र के लिए सबसे बड़ा कार्य यह है कि अपनी माँ के धर्म को, माँ के कर्तव्य को पूर्ण करे, जाओ, परंतु एक विनंती है बेटा, तुम वन में जा रहे हो, अपने साथ मुझे लेकर जाओ। भगवान राम ने अपनी माँ को मनाया, कई कई बार बार कह रही है बेटा तू तो चला जाएगा परंतु मैं वैदेही को क्या जवाब दूंगी। ये बात हो ही रही थी, तुरंत सीता आई और सीता को पता चला कि जा रहे हैं, सीता ने कहा प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। बहुत सुंदर वार्तालाप, नारी धर्म का वर्णन हुआ है। लखनलाल आए, लक्ष्मण ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम लक्ष्मण जानकी तीनों जाने के लिए तैयार हुए हैं। दशरथ जी ने सुमंत्र जी को कहा कि आप मेरा रथ लेकर जाओ, राम को मेरे रथ पर बिठाओ और दो तीन दिन चक्कर घुमाकर वापस लेकर आना। भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी रथ पर सवार हुए हैं। आज सारी अयोध्या भगवान को के साथ चल रही है। कोई बात नहीं, राम वन में जा रहे हैं, हम सब लोग वन में जाएंगे। सारी अयोध्या 14 साल का बोरिया बिस्तर बांधकर भगवान राम के साथ हम साथ में रहेंगे, क्योंकि जहां भगवान राम है वहीं पर हमारी अयोध्या है। सारी अयोध्या के आंखों में आज आंसू है। भगवान राम जा रहे हैं और जाते जाते तमसा नदी के तट पर पहुंचे। वहां पर एक रात के लिए विश्राम किया। सारी प्रजा सो रही थी, सुमंत्र जी को भगवान ने जगाया और उस रथ को तेज गति से चलाकर निषाद राज गुह के गांव में आ गए। एक रात के लिए यहां पर विश्राम किया। दूसरे दिन सुबह निषाद राज से आज्ञा लेकर भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता वहां से निकले हैं। भगवान को जंगल में जाना है और ये तीन अकेले हैं और रास्ते में गंगा नदी पड़ रही है, गंगा को पार करना है। भगवान राम ने देखा कि गंगा को पार करना है और यहां पर कोई पार कराने वाला न तो नाविक है न कोई। वास्तव में वो बहुत बड़ा गांव था, वहां नाविक भी बहुत थे, परंतु एक केवट नाम का आदमी, निषाद राज गुह जो थे उस सभी केवटों के सभी नाविकों के राजा थे। उन्होंने एक दिन ऐसा कार्य किया, निषाद राज ने उसे मेडल दिया, आपको जो इच्छा है हमसे मांग लो। केवट ने कहा कि अभी नहीं, समय आने पर मैं आपसे मांगूंगा। और केवट को पता चला कि कल सुबह भगवान राम यहां से निकलने वाले हैं। केवट रात को ही निषाद राज के घर पर गया, आपने उस दिन कहा था जो चाहिए वो मांग लो, तो आज मैं आपसे मांग रहा हूं कल आप पूरे बॉम्बे में हड़ताल करवा दो, कोई रिक्शा गाड़ी चलनी नहीं चाहिए। अर्थात आज गंगा के किनारे किसी की भी नौका नहीं लगनी चाहिए, केवल केवट अकेला बैठेगा, ये मेरी इच्छा है। ये राजा थे और राजा ने ऐलान करवा दिया और केवट सामने के किनारे पर जाकर नौका लेकर बैठा था। भगवान ढूंढ रहे हैं, भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी ढूंढ रहे हैं और केवट को दूर से बुला रहे हैं। भगवान इशारा कर रहे हैं कि यहां आओ यहां आओ। केवट दूर से ही कह रहा है नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। भगवान बार बार इशारा कर रहे हैं कम से कम यहां आकर बात तो करो। केवट कहता है कि नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो भगवान ने इशारे में पूछा क्या तकलीफ है, आपको प्रॉब्लम क्या है। तब केवट इशारा करते हुए कहता है कि प्रभु आप में कोई तकलीफ नहीं है, आपके चरणों में भी कोई तकलीफ नहीं है, प्रभु आपके चरणों में जो रज लगी है उस रज में तकलीफ है। बोले क्या तकलीफ है मेरे पास आकर कहो। केवट पास आते हैं और भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु आपके रज में आपके चरण में जो रज लगी है ना, वो रज किसी को स्पर्श होती है तो वह पत्थर भी जीव बन जाता है। हमने सुना है कि आप जनकपुर में जा रहे थे, किसी पत्थर के ऊपर आपने अपना चरण रखा और चरण की रज स्पर्श होते ही वो पत्थर नारी बन गई। प्रभु वो तो पत्थर था और मेरी नौका तो लकड़े की बनी हुई है, यदि आप मेरी नौका पर पांव रख दोगे और मेरी नौका यदि नारी बन गई तो पहले से ही एक नारी से परेशान हूं, दो दो नारी को कैसे संभालूंगा प्रभु। हम जानते हो ये कितना बड़ा भार है, इसलिए प्रभु आप और कुछ काम है तो कहो, बाकी नौका में बैठने के लिए मैं आपको नहीं बिठा सकता हूं। भगवान बार बार विनंती कर रहे हैं, केवट बार बार ना कह रहे हैं। लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं और बार बार लक्ष्मण जी बाण निकालते हुए केवट को कहते हैं, परंतु केवट भी कम नहीं है,
पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चो होई राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची को पर तीर मारो तकन पे लगिन पाय पकारी हो तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पारी उतारी हो तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पारी उतारी हो।
केवट भी कम नहीं है, केवट ने कहा ये लक्ष्मण भले बाण से मुझे मार डाले आज शहीद हो जाऊंगा परंतु प्रभु आपको मैं मेरी नाव पर नहीं बिठाऊंगा, आज मेरी लाश भले गिर जाए मैं भले मर जाऊं परंतु मैं तुम्हें अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा।
करुणा निधि बोले मुस्काई सोई करु जे ही तव नावन जाई।
तब करुणा निधि करुणा के निदान भगवान श्री रामचंद्र केवट से सौम्य भाषा में कहते हैं केवट तो आपके पास और कोई उपाय है हमें नाव में बिठाने का। केवट सोच कर कहता है हाँ प्रभु एक उपाय है, यदि आप मेरे हाथों से अपने चरण को धोने देते हो तो मैं आपको अपनी नाव में बिठा सकता हूं।
लक्ष्मण ने कहा मैं धो देता हूं चरण तुम्हें की धोने की क्या जरूरत है। केवट ने कहा नहीं मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम ठीक से नहीं धोओगे और चरण रज रह जाएगी तो
मैं मेरे हाथ से यदि चरण धोऊंगा तो मैं आपको बिठा सकता हूं। तब भगवान ने कहा सोई करो जे ही नावन जाई।
केवट तुमको जो करना है करो लेकिन जल्दी हमको नाव में बिठाओ। केवट ने कहा एक मिनट प्रभु आप खड़े रहो मैं जल्दी घर से आता हूं आप एक मिनट खड़े रहो। केवट दौड़कर घर पे जाता है और घर से थाली पात्र को लेकर आता है भगवान के चरण को धोने के लिए।
धोवा जो रघुरा ए जी मने शक पड़ो मन माय पग मन धोवा जो रघुरा जो तुम्हारी તો આવી રીતે એક સાધારણ નાવિક એક કેવટ ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર ના ચરણ ધોવે છે. આકાશમાંથી અનેક દેવતાઓ પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરે છે અને પોતાના જીવનને લજ્જિત જાણી દેવતા કહે છે કે અમે આટલું ભણ્યા, અમે કોલેજમાં ગયા, સ્કૂલમાં ગયા, બૃહસ્પતિ પાસે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, છતાંય જે સૌભાગ્ય કેવટને મળ્યું એ સૌભાગ્ય અમને પ્રાપ્ત ન થયું. આજે કેવટ ધન્ય બન્યા છે. કેવટે ભગવાનના ચરણ ધોઈ નાખ્યા. ભક્તો, જે ભગવાનના ચરણ મોટા મોટા યોગીઓને યોગમાં નથી આવતા, મોટા મોટા ધ્યાનીઓને ધ્યાનમાં નથી આવતા, એવા ભગવાનના ચરણ આજે કેવટે પ્રાપ્ત કરી લીધા અને એ ચરણને ધોઈ નાખ્યા છે. ભગવાનના ચરણની રજ, ભગવાનના ચરણનું ચરણોદક જલ કેવટે પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. ગોસ્વામી તુલસીદાસજી કહે છે કે કેવટ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રને ગંગાની પાર પહોંચાડે એની પહેલા તો કેવટે એના પિતૃને આ સંસાર ભવસાગરની પાર પહોંચાડી દીધા, ભગવાનના ચરણોને ધોઈ નાખી દીધા. કેવટ ભગવાનના ચરણોને ધોઈ ભગવાનના ચરણોનું જલ પોતાના મસ્તક ઉપર ચડાવે છે. ત્યારબાદ પોતાની પત્નીને સૌભાગ્ય આપે, પોતાના પુત્રોને સૌભાગ્ય આપે, એક નહીં ચાર ચાર પુત્રો છે. આજે કેવટ ધન્ય બન્યા છે, એમની પત્ની ધન્ય છે, એમના સંતાનો ધન્ય છે. આજે અતિ આનંદ ઉમંગ અનુરાગા, આજે સમસ્ત જગ્યાએ સમસ્ત સ્થાન પર આ જલ પ્રાપ્ત કરીને સમસ્ત લોકો આનંદમય થઈ ગયા છે. અદભુત આનંદ. આમ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રના ચરણ ધોવાણા. હવે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રએ કીધું, કેવટ હવે મોડું થઈ ગયું છે, તમે અમને ગંગા પાર કરાવો. કેવટે કીધું, કોઈ વાંધો નહીં પ્રભુ, તમે અમારા ખંભા ઉપર બેસી જાઓ. લક્ષ્મણ ક્રોધિત થઈને કહે છે, ખંભાની વાત નહોતી થઈ, કેવલ ચરણ ધોવાની વાત થઈ હતી, ખંભા ઉપર બેસાડવાની વાત નહોતી થઈ. ભલે કોઈ વાંધો નહીં, કોઈ વાત નહીં, ચલકર નાવ મેં બેઠને દો, યદિ ચલકર નાવ મેં બેઠેંગે ફિર સે મિટ્ટી લગ જાયેગી, ફિર સે મુજે ધોના પડેગા. લક્ષ્મણ ને સોચા, ફિર સે ધોયેગા તો ફિર સે દો ઘંટા બિગાડેગા, ઠીક હે બિઠા લો અપને કંધે પર. તબ કેવટ ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર કો અપને કંધે પર બિઠા કર નૌકા મેં લેકર જાતે હૈ. હરે કૃષ્ણા કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.
કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ,
કેવટ કી નાવ ચલ રહી હૈ ભક્તો. આઈએ ભગવાન સે પ્રાર્થના કરો, હમારી નાવ ભી એક દિન એસે ચલને લગે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. નામ લેકર ગોસ્વામીજી લિખતે હૈ, યદિ ભગવાન કા એક નામ ભી જુબાન પર આ જાય, જિસ ભગવાન કા નામ લેને માત્ર સે ઇસ ભવસાગર કો પાર કિયા જા સકતા હૈ, ઉસ ભગવાન કો આજ ભક્ત ગંગા પાર કરા રહે હૈ. હરે કૃષ્ણા હરે કૃષ્ણા 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ રામ હરે હરે.
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ
જય હો,
કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ રામ રામ.
के धाम में भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, वासुकी नाग के ऊपर सोते हैं, लक्ष्मी जी 2400 घंटा उनका चरण दबाती है। एक बार क्षीर सागर का एक कछुआ क्षीर सागर के ऊपर आया और भगवान के चरण को स्पर्श करने गया। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं भगवान के और वह कछुआ आ रहा है, लक्ष्मी जी ने हटा दिया, भागो। फिर से वह कछुआ ऊपर आया, भगवान के चरण को स्पर्श करने जा रहा है, लक्ष्मी जी दूर कर देती है। फिर से वह कछुआ बार बार आता है लक्ष्मी जी को चरण स्पर्श करने के लिए, लक्ष्मी जी फिर से दूर कर देती है। तब कछुए ने सोचा, प्रभु अपने घर पर बैठे हो इसलिए आप अपना चरण मुझे छूने नहीं देते हो, एक दिन आप दोनों पृथ्वी लोक पर आओगे और आपको न चाहते हुए मजबूर होकर आज चरण स्पर्श नहीं करने देते हो ना, उस दिन चरण स्पर्श करूंगा, चरण को धो दूंगा और धोकर उस जल को पी जाऊंगा और आपको गंगा पार कराऊंगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। वही कछुआ केवट बना और आज केवट भगवान का ये सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे।
इस प्रकार केवट नौका तो चला रहा है परंतु गंगा नदी का किनारा बहुत छोटा था, यहां से वहां जाने में 2 मिनट भी नहीं लग सकती थी, परंतु केवट अब की अपनी नौका को उस नदी में ही गोल गोल घुमा रहा है और लक्ष्मण तरकस में से बाण बार बार बाहर निकाल रहे हैं, भगवान राम रोक रहे हैं, शांति रखो शांति रखो। कुछ रिक्शे वाले होते ना घुमा कर लेकर जाते हैं, ये केवट बार बार बीच में चक्कर घुमा रहा है, एक चक्कर दो चक्कर तीन चक्कर बार बार, तब भगवान से नहीं रहा गया। भगवान केवट को पूछते हैं, केवट भैया भैया इस प्रकार से आप हमें परेशान क्यों कर रहे हो, आप इस नदी में हमें बार बार गोल गोल चक्कर क्यों घुमा रहे हो, अब जल्दी किनारे पर पहुंचाओ, हम थक गए हैं, हम आपकी नौका में चक्कर काटते काटते थक गए, हमें किनारे पर पहुंचाओ। तब केवट भगवान को इतना ही कहता है, प्रभु प्रभु बस बस आप इतने में थक गए, आपको मैंने तीन चक्कर घुमाया, वो भी इस नदी का छोटा सा तीन चक्कर घुमाया, आप थक गए। हम लोग 84 के चक्कर घूमते घूमते आए हैं, प्रभु हम भी थक गए हैं, आप हमें भी इस भवसागर के पार लगा दीजिए प्रभु। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और तुरंत केवट अपनी नाव को किनारे पर लगाते हैं। भगवान राम सीता लक्ष्मण उस नौका से उतरते हैं। नौका से उतरकर भगवान राम अपने मन ही मन में संकोच महसूस कर रहे हैं कि केवट ने इतनी मेहनत की, हमें इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचाया, इसे कुछ उतराई देनी चाहिए, इसे कुछ मेहनत का फल देना चाहिए। जैसे भगवान के मन में ये इच्छा हुई कि मैं केवट को कुछ दूं, भगवान तो तपस्वियों के वेश में, भगवान के पास तो कुछ नहीं था, परंतु वशिष्ठ जी ने देवी सीता को स अलंकार, अलंकारों के साथ, आभूषणों के साथ भेजा था। अपने पति के मन की इच्छा को जानकर कि मेरे पतिदेव कुछ दान करना चाहते हैं, कुछ धर्म करना चाहते हैं, सीता किसी को पता न चले, वैसे भगवान रामचंद्र के हाथ में अपनी अंगूठी दे देती है। प्रभु आप अपना धर्म कीजिए, इसे कहते हैं स्त्री धर्म, इसे कहते हैं पत्नी। पति यदि धर्म कर रहा हो, पति यदि धर्म करना चाहता हो, तो पति को धर्म कर्तव्य करने में सपोर्ट करना, मदद करना, इसे पत्नी कहते हैं। और आप देखिए केवट ने जो मेहनत की थी, उस मेहनत की उतराई क्या थी, 10 पैसा 20 पैसा, लेकिन देवी सीता ने अपनी सोने की अंगूठी दे दी, इसे कहते हैं पत्नी। आज तो खुश होकर यदि कोई पति किसी को 10 रुपया देता है, 2 रुपया ज्यादा देना चाहता है, पत्नी कहती है ज्यादा क्यों दे रहे हो, वापस ले लो 2 रुपया, मांगने पर भी नहीं देते हैं, परंतु अपने पति को धर्म में मदद कर रही है। भगवान श्री रामचंद्र केवट को के पास जाकर केवट को उतराई देते हैं, अंगूठी दे रहे हैं, परंतु केवट हम जैसा भक्त थोड़ी न था, हम होते तो प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, इनकमिंग फ्री कर दो आप, कष्ट मिटे तन का। प्रभु बार बार विनंती कर रहे हैं कि उतराई ले लो, परंतु केवट ले नहीं रहा है। बार बार भगवान के कहने पर केवट ना कह रहा है। वास्तव में यह शुद्ध भक्त का लक्षण है। इस संसार में जो भगवान के भक्त होते हैं, कथा का सार भक्तों यही है, इस संसार में भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, वो भगवान को ही मांग लेते हैं। प्रभु हमसे, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, इतिहास साक्षी है, ध्रुव चरित्र, ध्रुव ने कह दिया स्वामी कृतार्थ अहम वरम न यांचे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, नरसिंह मेहता ने, मीराबाई ने, अनेक अनेक भक्तों ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको देना ही है, तो प्रभु हमें आप चाहिए, बार बार भगवान कह रहे हैं। और केवट हृदय से, केवट की आंखों में अश्रु आ गए हैं और भगवान से कहते हैं नाथ आज मैं काहू न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा,
नाथ आज मैं काहू न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा।
आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही बताइए आज मुझे क्या नहीं मिला, नाथ आज मैं काहू न पावा, आज मुझे क्या प्राप्त नहीं हुआ। इस संसार में सब लोग लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं, पैसे के पीछे पागल है, परंतु वही लक्ष्मी प्रभु आपके पीछे पागल है। प्रभु लक्ष्मी के नाथ आज मुझे मिल गए, मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए।
नाथ आज मैं काहू न पावा, दोष दुख
कीजिए सभी लोग प्रेम से। भगवान को अद्भुत स्तुति है।
बहुत काल में
लिए हैं मेरे हजारों जन्म बीत गए, उन हजारों हजारों जन्मों को पाकर मैंने बहुत मेहनत की, बहुत बहुत प्रयास किया, परंतु हे नाथ हजारों हजारों जन्मों की मजूरी का फल आज आपके दर्शन से प्राप्त हो गया, आज आप चरण आपके चरणों से प्राप्त हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए।
अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे।
अब कछु नाथन
कुछ नहीं
चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे।
नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बार बार भगवान कह रहे हैं ले लो ले लो ले लो, प्रभु आपको देना ही है तो आपका अनुग्रह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आप कृपा कीजिए, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। लक्ष्मण जी भी मना रहे हैं ले लेना भाई, हमको जल्दी लेट हो रहा है, ले 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 ले। लक्ष्मण जी मना रहे हैं परंतु मान नहीं रहे हैं।
बहुत कीन प्रभु लखन सिया नहीं कछु केवट ले,
बहुत कीन प्रभु लखन सिया।
सीता जी ने मनाया, लक्ष्मण ने मनाया, परंतु केवट ले नहीं रहा है।
बहुत कीन प्रभु लखन सिया नहीं कछु केवट ले,
बहुत कीन प्रभु लखन सिया नहीं कछु केवट ले।
विदा कीन करुणायतन भक्ति विमल बरु दे,
विदा कीन करुणायतन भक्ति विमल बरु दे।
आ विदा कीन करुणायतन भक्ति विमल बरु दे,
विदा कीन करुणायतन भक्ति विमल बरु दे।
हे नाथ आज मैं काहूं पावा, ते दोष दूर दारी
प्रकार केवट भगवान के चरणों में पढ़कर कह रहा है कि प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए।
अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो।
कुछ नहीं चाहिए प्रभु, देना ही है। देखिए भगवान के भक्त बहुत चतुर होते हैं, है? भगवान ने जब कहा मांग लो तब केवट मांग रहा है, क्या मांग रहा है?
फिरती बार मोही जो कछु देवा, फिरती बार मोही जो कछु देवा, सो प्रसाद धन शीर धर लेवा, सो प्रसाद में शीर धर लेवा।
हे नाथ, हे प्रभु आपको देना ही है, तो आप 14 साल के लिए वन में जा रहे हो, जब 14 साल के बाद आप वापस लौटोगे तो आप मेरी नाव में बैठकर ही वापस अयोध्या जाना, यही चीज मैं आपसे मांगता हूँ। भगवान ने तथास्तु कहा और केवट प्रसन्न हो गया, भगवान से गले लगे, दोनों की आंखों में अश्रु है, दोनों प्रसन्न है। भक्तों इस प्रकार से रामायण में अनेक लीला अनेक कथा अनेक पात्र का वर्णन है, परंतु सार यह है
भगवान की कथा में रस है, आनंद है और कथा अपने आप में पूर्ण है। कथा सुनने से हृदय की पवित्रता आती है, परंतु कथा के साथ उपदेश क्या है भक्तों? उपदेश यही है भगवान की शुद्ध भक्ति करे, ऑफिस के काम करे, घर के काम करे, केवट सब कुछ छोड़कर नहीं बैठा था, अपना काम कर रहा था, बिजनेस धंधा कर रहा था। स्थाने स्थिता श्रुति कथा, हम जहां पर हैं जैसे हैं वैसे ही रहे, परंतु साथ साथ भगवान की भक्ति करें। और कैसी भक्ति? स्वार्थ वाली भक्ति नहीं, प्रभु आप मेरा 1,00,000 रुपए का धंधा बना दो, मैं आपको 3 रुपए की अगरबत्ती चढ़ाऊंगा। स्वार्थ प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है, प्रेम में सौदा नहीं होता है, प्रेम में त्याग होता है, तपस्या होती है। केवट ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, केवट ने भगवान को ही मांगा। इसी प्रकार हम भी भगवान की भक्ति करते रहे, भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम ले, और भगवान से कुछ न मांगकर हम साक्षात भगवान को ही मांगे, तब जाकर हमें भगवान मिलेंगे। आप लोग देखते हो, आप सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना? कभी कभी माताएं अपने घर के काम करती रहती हैं, बच्चा रोने लगता है तो माता बच्चे को खिलौना दे देती है, ये खिलौने से खेलो, वो खिलौना, फिर भी बच्चा रोता रहता है तो दूसरा खिलौना देती है, तीसरा खिलौना, चौथा खिलौना, पांचवा खिलौना। खिलौना देने के बाद भी बच्चा रोता रहता है, तब माँ स्वयं जाती है और उस बच्चे को अपने हृदय से लगा लेती है। ठीक उसी प्रकार इस संसार के न धनम न जन्म न सुंदरी, हम धन को ठुकराएंगे, जन्म सुंदरी पद प्रतिष्ठा को ठुकराएंगे, तब जाकर भगवान हमें सीने से लगाएंगे, भगवान हमारे पास हमें प्राप्त होंगे। संसार को भूलेंगे, भगवान मिलेंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है, इसी प्रकार कथा सुनते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए और भगवान को मांगिए कि प्रभु हमें आप चाहिए। इसी आशा और अभिलाषा से आज के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल इस कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। अब भगवान श्री रामचंद्र भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, वहाँ से वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पंचवटी भरत मिलन, सुरपण का नाक काटना, सीता हरण और फिर आगे अनेक अनेक लीला कथा आएगी। आप सभी भक्तों से निवेदन है, आते रहिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।